ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम सातवां स्कंध पंद्रहवां अध्याय श्लोक 67, इज दैट राइट? दैट्स ऑन द बोर्ड। This is the regular voice they're reading in the class. You go back to Bhagavatam from today? Ete anye cha vidokte vartamana swa karma bhi vipi asya gatin yaya rajam sar bhakti van nala yate anisha vidokte वर्तमानस्व कर्मभिः गृहेऽपि अस्य कृतमियाय राजन् सद्भक्तिर्भन्नरा इत्यनेनैष विलोक्ते वर्तमानस्व कर्मभिः गृहेऽपि अस्य गतिविहाय राजम सद्भक्ति भान न रहा। Matajis, Vaishnavis, Shabdarth.
Ete, in vidhiyo se, anye, anya vidhiyo se, cha, tatha, veda uktahi, jaisa vedik shastro mein nirdesh hai, vartamanah, पालन करते हुए स्वकर्म भी अपने वृत्ति परक कर्तव्य से ग्रहे अपि घर पर भी अस्य भगवान कृष्ण के गतिम गंतव्य यायात पहुंच सकता है राजन हे राजा तद भक्ति भाग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करने वाला नरह व्यक्ति। अनुवाद। हे राजन, मनुष्य को अपने वृत्ति परक कर्तव्य इन निर्देशों तथा वैदिक ग्रंथों में दिए गए अन्य निर्देशों के अनुसार संपन्न करने चाहिए, जिससे वह भगवान कृष्ण का भक्त बना रहे। इस प्रकार घर पर रहकर भी मनुष्य अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। तात्पर्य।
अनुवाद दोहराइए।
हे राजन, मनुष्य को अपने
वृत्ति परक कर्तव्य
इन निर्देशों तथा
वैदिक ग्रंथों में
दिए गए अन्य निर्देशों के अनुसार संपन्न करने चाहिए, जिससे वह
भगवान कृष्ण का भक्त बना रहे।
इस प्रकार घर पर भी
रहकर मनुष्य अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। तात्पर्य, जीवन का परम लक्ष्य विष्णु अर्थात कृष्ण है। अतएव यदि कोई वैदिक अनुष्ठानों तथा भौतिकवादी कार्यकलापों के द्वारा कृष्ण रूपी गंतव्य तक पहुंचने का प्रयास करता है तो यह जीवन सिद्धि है। उसे कृष्ण को लक्ष्य बनाना चाहिए और जीवन के किसी भी स्तर से कृष्ण के पास पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। कृष्ण को सभी प्रकार की सेवा स्वीकार है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, माम ही पार्थ विपाश्रित्य ये पिशु पाप यौनय स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गति। हे प्रथापुत्र, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन वाले स्त्रियां वैश्य तथा शूद्र क्यों न हो वे परम धाम तक पहुंच सकते हैं। चाहे किसी कोई भी पद पर क्यों न हो, यदि कोई गुरु के निर्देश अनुसार अपना वृत्ति परक कर्तव्य करता हुआ कृष्ण तक पहुंचने का प्रयास करता है तो उसका जीवन सफल है। ऐसा नहीं है कि सन्यासी वानप्रस्थ तथा ब्रह्मचारी ही कृष्ण के पास तक जा सकते हैं। गृहस्थ भी कृष्ण के पास पहुंच सकता है बशर्ते कि वह बिना भौतिक इच्छाओं के शुद्ध भक्त बने। इसका एक उदाहरण अगले श्लोक में उद्धृत है।
ओम ज्ञानमिनन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाक्य चक्षुर्मिलितं श्रीचैतन्यमनोव्यस्तम् अभिगमेन भूतले स्वयं रूपाकरः वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापरकमलः श्री रूपं साधु 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 साध Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Hare Krishna Sayadisha Vidokte, Vatmana Sakarma Bhi, Kepi Asya Gatim Yaya, Ayam Sarbhavi Bhanna. So, Yaha, Narada Muni, Updesh De Rehe Hai. Pichle Adihai Mein, Yudhishthira Maharaj Ne Ek Prashan Pucha Tha. Yudhishthira Maharaj Ne Pucha, Ye Bataiye, हम जो गृहस्थ आश्रम में हैं किस प्रकार वैदिक शास्त्र पर निर्भर जीवन को सफल बना सकते हैं और नारद मुनि ने कहा उत्तर में संतों की संगत और शरणम कीर्तन महत्वपूर्ण है तो इसी विषय पर उपदेश आ रहा है और इस सातवें स्कंद में नारद मुनि स्पष्ट शिक्षा देते हैं ब्रह्मचार्य का क्या कर्तव्य वानप्रस्थ का क्या गृहस्थ का क्या और संन्यास का इस अध्याय में नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं सुसंस्कृत समाज के लिए क्या है उपदेश आज हम सोचते हैं कि अगर कोई अच्छे कपड़े पहने अच्छी गाड़ी चलाए वो सुसंस्कृत व्यक्ति है पर सुसंस्कृत व्यक्ति वो है जो कि शास्त्र के आधार पर जीवन बिताता है। यहां नारद मुनि क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, पर उसके आधार पर जो शिक्षा दी गई है इस अध्याय में और वैदिक साहित्य के अनुसार। पिछले श्लोकों में नारद मुनि ने कहा है कि चाहे व्यक्ति किसी भी आश्रम में हो, उसे मन से, तन से और वाणी से भगवान की सेवा करनी चाहिए। समाज शास्त्र में समाज का विभाजन चार वर्ण और चार आश्रमों में किया जाता है, ब्रह्मचारी की ऐसा वानप्रस्थ संन्यास, ये चार आश्रम माने जाते हैं, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार वर्णा माने जाते हैं। तो चाहे आप किसी भी सदस्य किसी भी अंग के सदस्य हो, विष्णु की सेवा आवश्यक है, और विष्णु की सेवा का माध्यम क्या है, मन वाणी और मन से, शरीर से और वाणी से। अब आज उनकी कथा पढ़ते हो छठे स्कंद में, आज में बुरी संगत में गिर गए थे और हर प्रकार के पाप के कार्य में जुड़ गए थे, तो यमराज ने तीन यामदूतों को भेजा उन्हें नरक में लाने के लिए। तो आप प्रश्न पूछो क्यों तीन, क्योंकि तीन साधन हैं जिनके द्वारा भगवान का स्मरण कर सकते हैं, भगवान को भूल सकते हैं। एक है ध्येय, दूसरा है वाणी, तीसरा है मन। जब तक हम इन तीनों को वश में नहीं रखें, आध्यात्मिक उन्नति कठिन हो जाती है। मन के द्वारा भगवान का चिंतन करो, जैसे कुछ दिनों के लिए आप भक्तों ने गौर लीला सुनी, और चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि अगर हम सदा गौरांगा महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करेंगे तो बिना शंका के जीवन को सफल बना सकेंगे। भगवान इस विषय पर गीता में क्या कहते हैं, मन मन भाव मद भक्तो मदयाजी माम माम वाचे सत्यम ते प्रति जने पियोषि में, मन द्वारा मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो। अगर तुम ये करोगे तो आपको क्या लाभ मिलेगा, बदले में आपको बिना शंका के कहां पहुंचोगे, कहां पहुंचोगे, भगवान के धाम। भगवद गीता के छठे अध्याय का विषय है ध्यान योग। भगवान कहते हैं मन द्वारा मन को हमें बंधु बनाना चाहिए, शत्रु नहीं। मन बंधु जब माना जाता है जब मन में आध्यात्मिक विचार हो, मन शत्रु जब बनाया माना जाता है तो मन में भौतिक विचार हो, तो हमें मन को मन पर विजय प्राप्त करना है। तो आप कहोगे पर मन पर विजय प्राप्त करना सरल है या कठिन है, हाँ अर्जुन ने क्या कहा इस विषय पर, वायु को वश में लाना ज्यादा सरल है। तो आप कहोगे जब मन को वश में लाना इतना कठिन है तो हम प्रयास ही क्यों करें। तो भगवान कहते हैं गीता में भक्तियों की विधियों के द्वारा मन को आप वश में ला सकते हो, ये है उपदेश। फिर वाणी के द्वारा, वाणी का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जीभ के द्वारा आप भगवान का गुणगान कर सकते हो या भगवान को भूल सकते हो। भगवद गीता में भगवान जीभ की तपस्या की चर्चा करते हैं। जीभ की एक तपस्या है जीभ द्वारा सत्य का उच्चारण करना। आज कलयुग में सत्य का उच्चारण कोई करना नहीं चाहता, तो जीभ द्वारा तपस्या क्या है, सत्य का उच्चारण। जीभ द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण, जीव द्वारा कृष्ण कथा की चर्चा। रूप गोस्वामी जी श्री उपदेश अमृत में हमें उपदेश देते हैं किस प्रकार भक्ति में आप आगे बढ़ते हो, किस प्रकार आपकी भक्ति नष्ट हो जाती है। फिर इस विषय में क्या कहते हैं, अत्याहारा प्रयश्च प्रज्वल्प जनसंघर्ष लोलम च सभी भक्ति विनश्यति। आपकी भक्ति कमजोर हो जाएगी, आस्ते आस्ते नष्ट हो जाएगी अगर आप प्रज्वल्प में रुचि लो। प्रज्वल्प का अर्थ है वो चर्चा जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं हो। और शास्त्र का निर्णय क्या है, हमें कृष्ण कथा में रुचि लेनी चाहिए। तो वाणी द्वारा कृष्ण कथा में रुचि लो, जैसे आपने पिछले 10 दिन से घोर लीला सुनते आए हो, फिर आप रोज भगवत में कृष्ण लीला उपदेश सुनते हो, इसकी चर्चा करो। एक दूसरे को मिलो तो इस विषय की चर्चा करो। वाणी द्वारा हमें सदा भगवान के नामों का उच्चारण और कृष्ण कथा में रुचि लेनी चाहिए। फिर नारद मुनि ने कहा ध्येय के द्वारा, ध्येय के में अनेक अंग हैं, नेत्र है, कान है, वाणी है, पैर है, हाथ है। इस विषय में हमारे समक्ष अमरीश महाराज का बड़ा सुंदर उदाहरण है। अमरीश महाराज ने अपने पैरों का उपयोग किया भगवान के मंदिर चल के जाने के लिए, हाथों का उपयोग किया किस लिए, किस लिए, भगवान के मंदिर साफ करने में, अपनी वाणी का उपयोग किया भगवान का गुणगान करने, माथे का उपयोग किया भगवान के सामने प्रणाम करने के लिए, नाक का उपयोग किया भगवान को सुमंदित फूल अर्पण किया सुनने के लिए, कानों का उपयोग किया किस लिए, भगवान का गुणगान सुनने के लिए। तो इस प्रकार अमरीश महाराज ने हमें उदाहरण दिया कि किस प्रकार हम हमारे अंगों का उपयोग कर सकते हैं भगवान की सेवा में। तो अज्ञानता में हम वाणी मन ध्येय का दुरुपयोग करते हैं, जब ज्ञान प्राप्त हो जाए तो फिर सदुपयोग करना चाहिए। आप भागवतम के 10वें स्कंद में नंद कंवर और मणिग्रीव की कथा पढ़ते हो, आप पढ़ते हो कि किस प्रकार जब नारद मुनि गुजर कर जा रहे थे, कुबेर के 2 पुत्र मणिग्रीव और नंद कंवर इतने नशे में थे कि उन्होंने अपने नंगे शरीर को ढका ही नहीं। नारद मुनि ने सोचा इनका उद्धार किया जाए। नारद मुनि ने एक तरफ से तो उन्हें श्राप दी, देवता के 100 वर्षों के लिए तुम वृक्ष बन जाओगे, पर कहां, कहां, बॉम्बे में नंद महाराज के आंगन में, जिसके पश्चात उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। यह अच्छी श्राप है। तो देवताओं के 100 वर्षों के पश्चात भगवान ने 2 अर्जुन पेड़ों को नीचे गिराया, उनसे क्या निकले, नंद कंवर मणिग्रीव। वो समझ पाए कि ये वर उन्हें नारद मुनि द्वारा प्राप्त हुआ था, और उन्होंने बड़े सुंदर स्तुतियों में नारद मुनि का गुणगान किया, जिसके पश्चात उन्होंने कहा अब से सदा हम अपने वाणी और मन और ध्येय का उपयोग करेंगे, किस लिए, भगवान की सेवा में। तो अज्ञानता दूर होती है ज्ञान के द्वारा, जिस प्रकार अंधेरापन दूर होता है रोशनी के साथ। तो नारद मुनि क्या कह रहे हैं, एक तो कह रहे हैं कि वैदिक शास्त्रों को कि कर्तव्य अपना निभाओ। अब चाहे गृहस्थ आश्रम भी हो पर आप अपना कर्तव्य निभाना चाहे। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे। चैतन्य महाप्रभु ने सर्वभौम भट्टाचार्य जो कि बहुत ऊंचे कोटि के मायावादी भक्त थे उनका उद्धार किया। फिर उनकी इजाजत लेकर दक्षिण भारत की यात्रा शुरू की। जब दक्षिण भारत की यात्रा शुरू करने जा रहे थे सर्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें कहा कि जब आप दक्षिण भारत की यात्रा में होगे आप एक बड़े प्रसिद्ध भक्त को मिलोगे जिनका नाम है रॉय, जिन्हें महाप्रभु मिले गोदावरी के तट पर और दोनों का बड़ा सुंदर वर्तालाप हुआ। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे दूर दूर से लोग आ रहे थे उनका हरि नाम सुनने के लिए, और ऐसा प्रभाव था महाप्रभु का कि महाप्रभु स्वयं भगवान है। ऐसा प्रभाव था कि उन महाप्रभु को देखते ही वो आकर्षित हो जाते थे और हरि नाम शुरू कर लेते थे। और इस प्रकार जब वो अपने गांवों में स्थानों में लौटते थे दूसरे व्यक्ति उन्हें देखकर वो भी कीर्तन करना शुरू कर देते थे। तो महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए तो एक गृहस्था कुर्मा के घर में निवास कर रहे थे। कुर्मा ब्राह्मण था। कुर्मा ब्राह्मण ने उनका बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया, उनके चरण धोए और कहा मेरा क्या सौभाग्य है कि भगवान मेरे घर आए हैं, मेरे पूरे खानदान का उद्धार हो गया। फिर कुर्मा ने कहा मैं गृहस्थ आश्रम में बहुत दुखी हूं, मुझे आप अपने साथ ले चलो, मैं संघर्ष से निकलना चाहता हूं। महाप्रभु ने कहा मेरे साथ चलने की आवश्यकता नहीं, जहां हो वहीं रहो, कृष्ण का नाम लो और कृष्ण की महिमा का प्रचार करो और गीता भागवत का अध्ययन करो और गीता भागवत का प्रचार करो। इस प्रकार तुम सदा मेरे साथ रहोगे, मैं सदा रहूंगा। ये उपदेश दिया था तो गया आश्रम में थे जिनकी औलाद थी, कि क्योंकि प्रभुपाद ये तात्पर्य में कह रहे हैं कि हर आश्रम में आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो अगर आप विष्णु की सेवा करो। चाहे आप कितने भी पतित हो, भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, मेरी शरण में जो भी आए, ये नहीं कि अगर आपने ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। चाहे आप मलेच्छा हो, चाहे आप स्त्री जीवन में हो, किसी जीवन में हो, अगर आप भगवान की शरण लो तो जीवन सफल हो सकता है। प्रभुपाद जी ने जब कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और विदेश से लौटे अपने विदेशी शिष्यों के साथ, ये पहली बार इतिहास में विदेशी भक्त बने थे, तो कईयों ने भारत में कहा स्वामी जी ने क्या किया, हमारे धर्म की बेइज्जती कर दी, इन मैचों को भक्त बना दिया। पर शास्त्र में क्या कहा गया है, चाहे कोई भी कितना पतित व्यक्ति भी क्यों ना हो अगर भगवान की शरण ले तो उसका उद्धार हो सकता है। एक समय किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा स्वामी जी आपको जादू कर सकते हो, क्योंकि ये सोचा जाता है माना जाता है कि भारत में कोई प्रचारक हो तो जादू भी करेगा। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं मैं जादू नहीं कर सकता, पर एक जादू मैंने किया है, तो वक्त व्यक्ति में बड़ी रुचि थी कौन सा जादू किया है। मैंने हजारों मिर्चियों को ब्राह्मण बना दिया है, मतलब कि जो व्यक्ति मिर्चा उसे कहते हैं जो कि शास्त्र के विपरीत कार्य करता है, वो ब्राह्मण उसे कहते हैं। ये नहीं इसने बाजार का दो पैसे का जिनू पहना है, इसका आचरण भी हो शास्त्र पर आधारित। तो ये कोई छोटा जादू नहीं है, ये असली चाह। एक समय प्रभुपाद जी वृंदावन में थे और एक जादूगर उन्हें मिलने आया। वो जादूगर कई चीजों को प्रभुपाद के सामने रखता था, फिर प्रभुपाद जी के टेबल से उन्हें गुम कर देता था। ऐसे जादूगर करते हैं। तो उसने प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी आपको मेरा जादू कैसे लग रहा है? स्वामी जी ने कहा बहुत अच्छा। फिर स्वामी जी ने पूछा, क्या तुम जन्म मृत्यु को भी छू मंतर कर सकते हो? तो उसने कहा नहीं ये मैं नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद ने कहा मैं कर सकता हूं। तो प्रभुपाद ने कहा फिर मैं तुम्हारे से अच्छा जादूगर हूं। तो प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जादूगर थे जिन्होंने हमें शिक्षा दी कि इस प्रकार जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। फिर जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे, एक उनके भक्त थे जिनका नाम था वासुदेव विप्र। वासुदेव विप्र को कोढ़ की बीमारी थी। इतने दयालु थे कि हालांकि उनका शरीर उनके पूरे शरीर में पस थी, फुंसी थी पस, और पस के ऊपर कीड़े थे पूरा शरीर। वो इतने दयालु थे जब कोई कीड़ा उनके शरीर से नीचे गिरता था उसे पकड़कर वापस जोड़ देते थे शरीर के साथ। तो वासुदेव विप्र को पता लगा कि महाप्रभु कुर्मा ब्राह्मण के घर में निवास कर रहे हैं। तो वो दौड़े दौड़े आए महाप्रभु का दर्शन लेने के लिए। जब वो पहुंचे कुर्मा ब्राह्मण के घर में, उन्हें सूचना मिली महाप्रभु तो चल पड़े हैं। तो खूब वास्ते विप्रा शोक में दुखी हो गए। महाप्रभु तो अंतर्यामी हैं क्योंकि स्वयं भगवान है। महाप्रभु को पता लग गया वास्ते विप्रा मुझे मिलने आया है और दर्शन नहीं पाने के कारण में अत्यंत दुखी है। तो महाप्रभु वापस लौटे कुर्मा ब्राह्मण के घर और वासुदेव विप्र को गले लगाया। जब गले लगाया उसका ये परिणाम हुआ कि वासुदेव विप्र खूबसूरत युवक बन गए, हैंडसम यंग मैन। जो बुढ़ापापन था, जो पस थी, सब समाप्त हो गई, सब हट गई। फिर वासुदेव विप्र के मन में यह भय आया कि कहीं मैं अब एक घमंडी नहीं बन जाऊं, क्योंकि अगर व्यक्ति बहुत खूबसूरत है, धनी है, पढ़ा लिखा है तो घमंडी हो जाता है। वासुदेव विप्र इतना खूबसूरत हो गया, जब वो खूबसूरत युवक शरीर प्राप्त कर लिया तो फिर उन्होंने उन श्लोकों का उच्चारण किया जिनका उच्चारण सुदामा ब्राह्मण ने किया था दसवें स्कंद में। सुदामा ब्राह्मण की कथा पढ़ते हो, वो द्वारका गए थे भगवान को मिलने के लिए, बचपन के मित्र थे। सुदामा ब्राह्मण गरीब था, ब्राह्मण अक्सर गरीब होते हैं। तो आप अब तो हम ब्राह्मण नहीं बनना चाहते, हमें तो वो धर्म दो जिसमें हम धनी बने। पर सुदामा ब्राह्मण गरीब था पर सुखी था, ब्राह्मण हर स्थिति में सुखी रहता है। तो जब भगवान को मिलने गए द्वारका में, भगवान ने तो बड़ी अच्छी तरह स्वागत किया, शिक्षा दी ब्राह्मणों का आदर कैसे दिया जाता है। तो कुछ मांगे बिना सुदामा ब्राह्मण लौट गया घर। रास्ते में ये सोच रहे थे, मैं इतनी दूर से गया मेरे मित्र को मिलने, और मैंने मांगा भी नहीं कुछ। तो जो घर लौटे उन्होंने क्या देखा, उनकी साधारण कुटिया बन गई थी महल। उनकी पत्नी जो फटी साड़ियों में पहनती थी पहले, रेशम की साड़ी में थी गहनों के साथ। सुसुदामा ब्राह्मण समझ गए ये संभव हुआ है मेरे गणेश मित्र के कारण। तो सुसुदामा ब्राह्मण ने बड़े सुंदर स्तुतियों से भगवान का गुणगान किया। तो वासुदेव विप्र ने जब देखा उसका बदसूरत शरीर जो कि फास फुंसी से भरा हुआ है खूबसूरत बन गए, तो उन्होंने उन श्लोकों का उच्चारण किया जो सुदामा ब्राह्मण ने किया था दशरथ कर्म में। तो उसने फिर आगे जाकर पूछा भगवान से, अब आपकी कृपा से मैं युवक बन गया हूं खूबसूरत, बताइए कि मैं घमंड से कैसे बचूं। हां प्रभु ने कहा, सदा हरि नाम करो और गीता भागवत पढ़ो और ये संदेश आगे दूसरों को पहुंचाओ। इस प्रकार तुम्हारे हमेशा विनम्रता का भाव रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु का संदेश और शासन के संदेश में कोई अंतर नहीं। तो यहां इस श्लोक में कहा जा रहा है, हमें हमारा चाहे आप किसी भी आश्रम में हो, जैसे हमें कहा चार वर्ण चार आश्रम है, किसी भी आश्रम में हो, हम सबका भाव होना चाहिए कि हर कार्य के द्वारा विष्णु की सेवा करें। भगवद गीता में भगवान कहते हैं और प्रभुपाद जी इन श्लोकों का उपयोग करते हैं तात्पर्य में, यत करोषि यद अश्नासि यद जहोषि ददासि यत यत तपस्वसि तत् कुरुष्व मनार्पणम्। जो भी तुम करो, जो भी तुम खाओ, जो भी यज्ञ करो, जो भी दान दो, जो भी शिक्षा प्राप्त करो, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, विष्णु की सेवा। अगर हर कार्य विष्णु की सेवा के लिए हो, जीवन सफल है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा रूप और सनातन का वर्णन आप चैतन्य चरितमृत में प्राप्त करते हो। ये दो भाई उस समय के बड़े प्रसिद्ध राजा हुसैन शाह के शासन का के राज्य का शासन कर रहे थे। रुचि नहीं थी शासन करने में, पर जबरदस्ती मुसलमान राजा ने इन्हें ये जिम्मेदारी दी। उन दिनों में लगभग 99% आबादी हिंदू थी। राजा चाहता था, राजा मुसलमान था, चाहता था कोई हिंदू प्रसिद्ध व्यक्ति शासन करे। तो रूप और सनातन ने शासन तो किया, पर उनकी रुचि नहीं थी इस कार्य में। रुचि थी महाप्रभु के साथ यात्रा करने में और भक्ति करने में, पर इन्हें जबरदस्ती जोड़ दिया था इस सेवा में। रूपा गोस्वामी जी ने अभी नौकरी त्यागी, रूपा गोस्वामी और सनातन रामकेली में मिले थे चैतन्य महाप्रभु को, जहां उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि हमें समाज के लोग कहते हैं कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं, पर हम ये भी नहीं जानते कि हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। ये थी उनकी विनम्रता। जैसे कि यहां आप देख रहे हो सातवें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, शिक्षा दीजिए जिसके द्वारा हम जीवन को सफल बना सकें। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज को पता नहीं, पर हमारी भलाई के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो रूप गोस्वामी को प्रयाग में महाप्रभु ने बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा दी 10 दिनों के लिए, जिसमें उन्होंने ये स्थापित किया कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात ये भक्ति का बीज प्राप्त होता है। ब्रह्मांड ब्रह्मीद करो भगवान जी, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। भक्ति का बीज, भक्ति का बीज का अर्थ क्या? ये ज्ञान जो कि इस श्लोक में दिया जा रहा है, इस श्लोक में ज्ञान दिया जा रहा है कि हमें मन वाणी ध्येय से क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा। तो ये है भक्ति का बीज, हर कार्य होना चाहिए विष्णु की सेवा में। तो ये भाव, ये उपदेश, ये निर्णय सफल कैसे होगा अगर आप भक्ति के बीज को पानी पिलाओगे? पानी की तुलना कैसे की जाती है? श्रवणम कीर्तनम। भक्ति का उपदेश तो है, पर जब तक आप जाप नहीं करोगे ये भाव बढ़ेगा नहीं। जैसे हम लोग ग्रंथों को बांटते हैं, लोग ग्रंथ खरीदते हैं, ग्रंथ में लिखा है चैंट हरे कृष्णा, आप चैंटिंग करते हो तो भक्ति का उत्साह बढ़ता है ना। आप सब जो यहां बैठे हो, सबसे पहले आप, ये तो मानना मुश्किल है कि आप पैदा हुए थे इस उपदेश के साथ, सोना माना करो। कोई शुक्रदेव गोस्वामी है ना? शुक्रदेव गोस्वामी ने माता के घर में ही पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो जब वो निकले 16 साल के बाद, 16 साल तक माता के गर्भ से नहीं निकल रहे थे, फिर व्यास, फिर भगवान ने खुद कहा घबराओ मत, माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। घर से, माता की गर्भ से निकलते ही रवाना हो गए सन्यासी की जैसे। तो हम सब शुक्रे को स्वामी नहीं थे, पर हमें भक्ति का ज्ञान मिला ग्रंथों के माध्यम से, साधु संगत के माध्यम से। और जब आप इस ज्ञान का उपयोग करो, ज्ञान क्या है? कलयुग में खले दोषे निराज नस्य का महागुना, दोषी दोष पर एक गुण है, कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग सब पर मिले। तो जब आप ये हरि नाम का लाभ उठाओगे फिर ये भक्ति का उत्साह बढ़ता है, सच बात है। और जब आप जाप करोगे उत्साहित रहोगे, जब करना बंद कर दो माया का प्रभाव आ जाएगा, सच है। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा दी कि किस प्रकार यह भक्ति का बीज बढ़ता है, और ये भक्ति नष्ट भी हो जाती है अगर हम वैष्णव अपराध करें। उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक पागल हाथी को आप सुंदर बगीचे में छोड़ दोगे तो क्या परिणाम होगा? पूरा बगीचा नष्ट हो जाएगा। दूसरे शब्दों में महाप्रभु ने उपदेश दिया किस प्रकार हमें अपराधों से बचना चाहिए। रूप गोस्वामी ने अभी नौकरी त्याग ली थी, जो और जब नौकरी त्यागी इतने सोने के सिक्के थे कि पूरी नाव भर गई थी, पूरी नाव। आजकल तो कागज के नोट हैं जो दिन ब दिन पतले होते जाते हैं, उन दिन में सोने के सिक्के थे व्यापार के लिए। और उन्होंने 50% बांटा ब्राह्मणों को, 25% रिश्तेदारों को, और 25% रखा भविष्य की आवश्यकताओं के लिए। सनातन गोस्वामी ने, उनकी भी रुचि नहीं थी सरकारी नौकरी में, सनातन गोस्वामी ने नवाब को चिट्ठी भेजी, मैं बीमार हूं, मैं दफ्तर नहीं आ सकता। लगभग 1 महीना बीत गया था, नवाब रोज घड़ी देख रहा था कब सनातन आएगा। ये पूरे किंगडम, राज्य का शासन की जिम्मेदारी इन दो भाइयों को दी हुई थी। जब रूप गोस्वामी ने नौकरी त्यागी तो सारा बोझा सनातन पर गिर गया। वो सनातन भी नहीं आ रहे थे दफ्तर, तो बोझा राजा पर गिर रहा था। वो राजा जाना चाहता था उड़ीसा के राजे से युद्ध करने के लिए, तो राजा ने अपने डॉक्टर को भेजा, वैद्य। तो आजकल तो कोई आपके घर में आना चाहे तो पहले घंटी मारता है, फिर आप पूछते हो कौन है, आप नहीं खोलना चाहते तो नहीं खोलते। टेलीफोन में भी आप जवाब देखते हो कौन है ना, फिर जवाब देते हो। अगर कोई कर्जा वाला आदमी है तो फिर आप जवाब ही नहीं देते। तो उन दिन में ये सुविधा नहीं थी, तो वैद्य सीधा कमरे के अंदर पहुंच गया। उसने देखा कि सनातन 30 ब्राह्मणों के साथ बैठकर चारों तरफ भागवत का ग्रंथ है, भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने जाकर नवाब को कहा, आपका सनातन तो बिल्कुल ठीक है, सूचना भेज रहा है बीमार है पर है ठीक, वो तो 30 ब्राह्मणों के साथ बैठकर भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। तो राजा ने कहा, बुलाओ सनातन को। सनातन राजा को मिलने आए। सनातन ने राजा को प्रणाम किया, ये बताया किस प्रकार बड़े व्यक्ति का आदर दिया जाता है। फिर सनातन ने कहा, राजा ने कहा, मैं चाहता हूं तुम शासन संभालो। सनातन ने कहा, अब मैं ये नहीं कर सकूंगा। मैं राजा ने कहा, जेल में डाल दो। तो सनातन को जेल में डाल दिया। जो जेलर था, जेलर क्या कहते हैं, जो जेल का इंचार्ज था वो मुसलमान अधिकारी था। सनातन को सूचना मिल गई थी क्योंकि भाई रूपा ने 10,000 सोने के सिक्के उनकी सुरक्षा के लिए रखे हैं वो बनिए की दुकान में। कोई बैंक नहीं था उन्होंने, मैं आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं था उन्होंने। तो सनातन ने वो जो जेलर था मुसलमान उसे कहा, ले लो ये 5,000 सोने के सिक्के, मुझे छोड़ दो। जेलर ने कहा, मैं मानता हूं कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है, क्योंकि सनातन लगभग प्रधानमंत्री था, पर तुम बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हो, तुम्हें अगर मैं छोड़ूंगा तो राजा मुझे पकड़ लेगा। सनातन ने देखा ये छोड़ने को तो तैयार है, ये लालची आदमी है। सनातन ने कहा, ये लो 7,000 सोने के सिक्के। फिर उनको सनातन को छोड़ दिया। फिर सनातन एकांत के स्थान में चलकर उनका लक्ष्य था वाराणसी पहुंचने के लिए, क्योंकि वाराणसी में थे कौन कौन कौन, महाप्रभु। फिर सनातन चले वाराणसी की ओर। उन्हें सूचना आ गई थी कि महाप्रभु वाराणसी पहुंच गए हैं। सनातन ने रास्ते में एक बड़े जमींदार के यहां रुके। सनातन के साथ एक सेवक था जिसका नाम था ईशान, जिसके पास 8 सोने के सिक्के थे, जिसकी सूचना सनातन के पास नहीं थी। तो रास्ते में रुके रात के समय जमींदार के घर में। जमींदार बड़ी खातर कर रहा था सनातन की, बड़ी अच्छी तरह खातर। कोई आपकी ज्यादा खातर करे तो आपको शक हो जाता है ना, ये जेब तो नहीं काटेगा मेरा। तो सनातन ये जो जमींदार था उसके पास एक जोशी था साथ में, हमें हमारे गेस्ट हाउस में भी रखना चाहिए सर जोशी। वो जोशी देख लेता था हर व्यक्ति जो आ रहा है कितना धनी है। तो जोशी ने कहा कि ये तो बड़ा धनी आदमी है सनातन। सनातन के पास तो एक कौड़ी भी नहीं थी, उनके नौकर के पास थी सारे। तो बड़ी देखभाल कर रहा था बड़े उत्साह से। तो सनातन ने अपने नौकर से पूछा, तुम धन तो नहीं उठा रहे अपने साथ? उनके नौकर ने कहा, ईशान ने मेरे पास 700 सोने के सिक्के। सनातन ने कहा, तो मौत को क्यों उठा रहे हो अपने साथ? सनातन एकांत के गलियों से जंगल से जा रहे थे, और धन होगा तो भय रहेगा। गरीब व्यक्ति तो सोता है दरवाजा खुला छोड़कर, है ना? सच बात है, झोपड़पट्टी वाले तो सड़क में खुलते हैं, दरवाजा बंद भी नहीं करते। पर धनी व्यक्ति को दरवाजे क्या, कई ताले लगाने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी दीवार बनानी पड़ती है, दीवार के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर बनाना पड़ता है, फिर 10 कुत्ते रखने पड़ते हैं अवैध धन की सुरक्षा करने के लिए। पर गरीब व्यक्ति का कोई चिंता नहीं रहती। तो सनातन ने कहा कि ये मौत को क्यों साथ ले जा रहे हो? सनातन ने 7 सिक्के लेकर वो जमींदार था उसे दे दिए। जमींदार ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं ले सकता, मुझे सूचना मिली थी कि आपके पास 800 सोने के सिक्के हैं, और मैं सोचा था रात को तुम्हें मार कर ये सिक्के ले लूंगा, पर अब तुमने मुझे पाप करने से बचा दिया है। सनातन ने कहा, आप नहीं लोगे सिक्के तो कोई और मार के ले लेगा, आप ही ले लो। वे सनातन को सहयोग दिया। इसने जमींदार ने एक आदमी दिया। सनातन जा रहे थे वाराणसी की ओर, रास्ते में वो रुके श्रीकांत के घर में। श्रीकांत हाँ, एक स्थान में आए थे घोड़े खरीदने के लिए। श्रीकांत थे सनातन के बहन के पति। श्रीकांत ने देखा सनातन को, बड़ी बड़ी दाढ़ी, फटे हुए कपड़े। उन्होंने कहा, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम तो इतने बड़े राजा के शासन कर रहे थे, क्या हो गया है? श्रीकांत ने कहा, ये लो ये महंगी चादर, तुम मेरे साथ रहो। श्रीकांत 3 लाख सोने के सिक्के लेकर घोड़े खरीदने आया था राजा के लिए। खैर, सनातन पहुंचे वाराणसी, जहां की चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर के घर में निवास कर रहे थे। जब इतवार को हमने गौरकथा की तो चंद्रशेखर तपन मिश्रा की चर्चा की थी। चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी हैं, उन्हें पता लग गया कि चैतन्य कोई सनातन पहुंच गया है उधर। तो महाप्रभु ने चंद्रशेखर को कहा, देखो बाहर जाओ, वहां एक संत उपस्थित है। वो बाहर आए, चंद्रशेखर ने देखा चारों तरफ, उन्हें कोई साधु नहीं नजर आया। एक आदमी नजर आया दाढ़ी के साथ, तो उन्होंने सोचा मौला होएगा। तो उन्होंने लौट कर कह दिया, मुझे तो कोई संत नहीं नजर आता, केवल एक मौला नजर आता है। तो सनातन महाप्रभु ने कहा, वो मौला नहीं, वो बहुत ऊंचे कोटि का भक्त है सनातन। तो जब सनातन चंद्रशेखर के घर में प्रवेश किया, महाप्रभु ने उनका पूरा शरीर पस से भर गया था, क्योंकि वो छुप छुप कर आ रहे थे महाप्रभु को मिलने के लिए। जंगलों में चलना पड़ा, पहाड़ों के बीच में पर चलना पड़ा, तो उनके पूरे शरीर में फुंसी हो गई थी और पस से भर गया था। तो जब वो पहुंचे, तो जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को देखा, ने गले लगाया। जैसे गले लगाया, सनातन ने कहा, ऐ मुझे गले क्यों लगा रहे हो? मेरा शरीर पस से भरा हुआ है। और महाप्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अपने शरीर के साथ जोड़कर अपने आप को पवित्र बना रहा हूं। महाप्रभु ने इतना आदर दिया सनातन गोस्वामी को और मैं अपने आप को पवित्र बना रहा हूं। और फिर आगे चैतन्य चतुर्वृत में है कि जो संत हैं सनातन गोस्वामी जैसे वो यात्रा करते हैं तीर्थ के स्थानों को भी पवित्र बनाने के लिए। असल में ये श्लोक भागवत में है यहां युधिष्ठिर महाराज ने विदुरा के विषय में कहा कि तुम्हारे जैसे संत जो हैं तीर्थ के स्थानों की यात्रा करते हैं उनको भी पवित्र बनाने के लिए। तो आप कहोगे पवित्र के स्थानों को पवित्र कैसे बना सकते हैं? लोग तीर्थ के स्थानों में जाते हैं अपने पाप के बोझे को छोड़ने के लिए, संत वहां जाते हैं उपदेश देने के लिए जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी की बड़ी गले लगाया महाप्रभु ने। और फिर चंद्रशेखर ने नए कपड़े दिए सनातन को पहनने के लिए, एक धोती कुर्ता। सनातन ने कहा मुझे ये नए वस्त्र नहीं चाहिए मुझे। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हुए जब उन्होंने देखा कि सनातन ने नए कपड़ों को लेने से इनकार कर दिया है। फिर चंद्रशेखर ने सनातन को पुरानी धोती दी जो कि उन्होंने फाड़ी दो भागों में और पहनने के लिए। सनातन ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु उनकी महंगी चादर जो श्रीकांत ने दी थी उस पर घूर कर देख रहे हैं। तो सनातन समझ गए कि महाप्रभु खुश नहीं है उनकी गहरी चादर से। तो सनातन गए गंगा के तट पर। एक बूढ़ा बंगाली यात्री था वहां जिसने अपनी फटी कंबल को सुखा रहा था धूप में। सनातन ने उसे कहा मैं ये महंगी चादर आपको देना चाहता हूं, बदले में आप वो फटी हुई चादर दे दो। उसने कहा तुम हंसी उड़ा रहे हो मेरी, क्या तुम अपनी इतनी महंगी चादर दोगे फटी हुई चादर के बदले में? सनातन ने कहा नहीं, हंसी नहीं उड़ा रहा। तो फिर जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि सनातन गोस्वामी ने अपनी फटी हुई महंगी चादर को बदल दिया फटी हुई चादर में, महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने कहा एक अच्छा डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करके जो बीमारी का कारण है उसे नहीं रहने देता। तो मतलब कहने का यह था सनातन ने त्याग के जीवन बिताई है तो उनका सारा जीवन होना चाहिए। ये नहीं हम त्यागी हैं, हम 10 अंगूठियां पहने हीरे मोती के साथ और घुसोरे का चेन पहने नहीं। उनका मतलब था ये नहीं कि हम फटे हुए कपड़े पहने पर तो मतलब था सादा जीवन होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को भक्ति के विषय में काफी गहराई के साथ शिक्षा दी जिसमें महाप्रभु ने कहा जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करो, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे क्या करो? त्याग करो। तो जो कार्य भक्ति के लिए अनुकूल है वो हमें स्वीकार करना चाहिए। तो आप पूछोगे हमें कैसे पता क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है? एक उपाय है शास्त्र, दूसरा है गुरु, तीसरा है साधु। गुरु साधु शास्त्र के द्वारा हमें ये ज्ञान मिलता है क्या अनुकूल है और क्या। और रूप गोस्वामी कहते हैं हे मेरे प्रिय मित्र जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, पर कृष्ण भक्ति को हाथ से मत फिसलने दो। तो ये होना चाहिए हमारा लक्ष्य, चाहे आप ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। हम इस श्लोक के अनुसार, इन श्लोकों के अनुसार मन वाणी ध्येय द्वारा हमें क्या करना चाहिए, विष्णु की सेवा। और चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहा, जो प्रतिकूल कार्य है उसे त्यागो, वो जो अनुकूल है उसे स्वीकार करो। और अनुपम गोस्वामी कहते हैं, हे मेरे मित्र, जो कि मैं भी भरने पड़े भरो। जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो कई चीजों को त्यागना पड़ता है। आपको आदत है अंगूठा चूसने की, तो जब बड़े होते हैं तो माँ बाप क्या कहते हैं, अंगूठा चूसना बंद करो, बुरा देखता है ना। तो इसी प्रकार जब हम गुरु साधु शास्त्र के संबंध में आते हैं तो हमें पता लगता है क्या प्रतिकूल है क्या अनुकूल है। और चैतन्य महाप्रभु ने अपनी गहरी शिक्षा को पांच अंगों में सार रूप में प्रस्तुत किया। एक अंग था साधु संगत, दूसरा है हरि नाम का उच्चारण नामक कीर्तन, तीसरा है भगवत कृष्ण, चौथा है भगवान के आचर्य विग्रह की श्रद्धा और आदर से उपासना, और पांचवा है धाम है, बॉम्बे धाम है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बहुत समय यहां काटा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इन पांच अंगों का पालन करोगे तो आप भक्ति में सरलता से सफलता प्राप्त कर सकते हो। और प्रभुपाद जी ने इस कौन संस्था की स्थापना की जहां की हमें साधु संग प्राप्त होता है, जिसके सहयोग से भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। तो संक्षेप में आज के महत्वपूर्ण श्लोक में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि जो शिक्षा हम दे आए हैं, जो शिक्षा वेदों में है, उसके आधार पर हम चलेंगे तो चाहे आप किसी भी आश्रम में हो, आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। और हर कार्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए, विष्णु की सेवा, विष्णु की प्रशंसा। हमारा सिद्धांत है भगवान की खुशी में हमारी खुशी, और बौद्धिक वादियों का सिद्धांत क्या है, हमारी खुशी में भगवान की खुशी। इंद्रिय तृप्ति मिलेगी तो भगवान में खुश हो गए। हमारा सिद्धांत है जिस कार्य द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं उस कार्य को हम निभाएंगे तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो शास्त्रों को सुनोगे तो ये शिक्षा प्राप्त होगी, जिसके सहयोग से आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। हरे कृष्णा। ओके, 9:30 बज गए। एनी क्वेश्चंस? जब पीछे कर गए थे वो आज क्वेश्चन इन इंग्लिश हिंदी है नहीं। यस, जल्दी
हरे कृष्णा महाराज जी, इतने अच्छे प्रवचन के लिए धन्यवाद। मैं प्रश्न के रूप में अपने मन का संशय कहना चाहूंगा, क्षमा चाहता हूं उसके लिए, कि अक्सर वासुदेव विप्र का उदाहरण दिया जाता है।
किसका?
तो वासुदेव विप्र, वासुदेव घोष, जो जिनको कोढ़ हो गया था,
विप्र।
हाँ, और वो इतने दयालु थे, इतने ऊंचे भक्त थे कि अपने कोढ़ में पड़े हुए कीड़ों पर भी दया किया करते थे। पर वो अपने ऊंचे भक्ति से अपना कोढ़ और अपना तकलीफ दूर नहीं कर पाए। अपनी तकलीफ दूर करने के लिए उनको चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन करना पड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु जी उनको उनकी भक्ति की वजह से मैं समझता हूँ दर्शन नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने तो जगाई मधाई को भी, जैसे अभक्त को भी दर्शन देकर उसका उद्धार किए थे। तो यहाँ पे एक निराशाजनक इसमें एक संदेश छुपा है कि क्या ऊंची भक्ति अपने तकलीफों, कष्टों और बीमारियों को भी दूर नहीं कर पाता है, इसलिए भगवान का दर्शन करना पड़ेगा।
वासुदेव विप्र किसी बौद्धिक इच्छा के साथ महाप्रभु के पास नहीं आए थे। वासुदेव प्रभु इतने दयालु थे, इतनी सहने की शक्ति थी, हालांकि उनके शरीर में दर्द था, कभी किसी को कुछ कहते नहीं थे। महाप्रभु ने खुली दया की। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। यस क्विकली
महाराज, आप बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला वासुदेव विप्र को कि आप जप करो और भगवद गीता और पढ़ो और प्रचार करो तो आप हमेशा अभिमान से बचे रहोगे, नम्र रहोगे। तो हम देखते हैं हमारे जीवन में हम प्रयास करते हैं ऐसे तो अभिमान और बढ़ रहा है।
अच्छा, आप क्या बढ़ रहा है? अभिमान बढ़ रहा है, ये खतरनाक भाव है। महाप्रभु ने कहा है नाद भी सुनी चेहरा तोड़ भी सही नमानी नमाना लेना कितना भी। अगर आप सदा कीर्तन करना भगवान का नाम लेना चाहते तो क्या पहला क्या नियम है? सहनशील हो जाओ, आदर दो अपमान के बगैर, आदर दो आदर की उम्मीद के बगैर, सहनशील हो जाओ। अहंकार बढ़ रहे हैं जैसे कि आपको जब बीमार बुखार होता है या शरीर में तकलीफ होती है तब इलाज करते हैं ना ठीक करने के लिए। तो अगर आपको लगे कि अहंकार है, अहंकार आपका शत्रु है। अहंकार बहुत का वजन क्या है? बहुत भारी। शरीर का वजन है 70 किलो, अहंकार का वजन है 140 किलो। शरीर का तो हम सब में बड़ा अहंकार है। हम सब सोचते हैं हम भगवान की देन है पृथ्वी पर। हम खास देन है भगवान की पृथ्वी पर। तो हमें सोचना चाहिए हम सबसे मूर्ख हैं। कृष्णदास काविराज कहते हैं मेरा नाम ही मत लो, नाम लोगे तो तुम्हारे सारे गुण मिल जाएंगे। और हमारी क्या स्थिति है? नाम नहीं लोगे तो मतलब तुम ईर्ष्या द्वेष रख रहे हो, योर एनिमी इज मी। तो अहंकार को हमें दूर करना है। अहंकार जितना रखोगे उतना तड़फोगे। यस इधर ओके। यस ओनली वन आर डू मोर क्वेश्चन।
हरे कृष्ण महाराज जी,
लेट
जैसे सनातन गोस्वामी जी ने कुछ रेशमी कपड़ा पहना था तो महाप्रभु को पसंद नहीं आया, तो हम कभी कभी अच्छे कपड़े पहन लेते या अच्छा प्रसाद भी खा लेते। महाप्रभु की शिक्षा में ऐसे बोला जाता है कि भले ना खाई भले ना पड़ी, तो हमको कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए?
बड़ा अच्छा प्रश्न है। मैंने 1969 में प्रभुपाद को एक पत्र लिखा था इस विषय पर। प्रभुपाद ने उत्तर में कहा देयर इज अ बंगाली सेइंग, you dress to please others and you eat to please your stomach. Prabhupada ne kaha ki ek bengali kahawat hai, aap kapde pehante ho dusron ko aakarshit karne ke liye aur khana khate ho pet bharne ke liye. To matlab ye tha ki agar aap abhi jaise hum aadhunik samaj mein hain, agar aap khola pe sheedha jaise phati kurtiyan dhoti pehnoge to kahenge bhikhari aa gaye. तो आप जैसे जॉब करते हो, हाँ जॉब करते हो ऑफिस में, तो आप जॉब करते हो तो आप सूट पहन के भी जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। हम यही कह रहे जॉब कर रहे हो तो दफ्तर में फटी धोती पहन के जाओ। समय के साथ, पर अगर सन्यासी हो ब्रह्मचारी हो तो सारा जीवन बिताना जाए, ये कह देगा हमारा।
और प्रसाद
जो खाना है खाओ, भगवान को भोग लगाओ। महाप्रभु खुद भंडारा करके लोगों को खिलाते थे, तो प्रसाद खाओ। पर यही शर्त है, ईद ओनली कृष्ण प्रसाद। आप हांगकांग में जाओगे तो आपको गोविंदा में चाइनीज प्रसाद मिलेगा, इटली में जाओगे गोविंदा में इटालियन प्रसाद मिलेगा। तो अवश्य चीज है, प्रसाद खाओ। Okay, any more questions? Yeah.
हरे कृष्णा महाराज. सो आप बता रहे थे कि रूप गोस्वामी जी ने बताया था कि भक्ति में जो भी कीमत.
You can ask questions in English also if you want. Yeah, हाँ बोलिए.
रूप गोस्वामी बता रहे थे कि भक्ति में जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, लेकिन भक्ति को मत जाने दो. लेकिन कभी कभी हमें पता होता है कि हमें क्या कीमत भरनी है, फिर भी माइंड मतलब इट ट्रिक्स दैट इट डजंट अलाउ अस टू पे दैट.
यस, माइंड इज वेरी स्ट्रांग. More difficult to control the mind than turbulent wind. Bhakti Siddhanta Ji, our spiritual grandfather, used to say every morning when you get up, you are like a sawar maro. Raat ko so de bhai jharu se. Matlab kya hai? Man ko bolo aap usko sunoge, nahi, nahi sunoge, nahi sunoge. To kisko sunoge? Guru Sadhu Shastra. Jo Shastra mein hai. Jaise Prabhupada Ji ne hamein 100% वही उपदेश दिया था शास्त्र में. एक शब्द नहीं कहा अपने मन का, तो उसे मानो. मन को वश बनाना कठिन है पर असंभव नहीं. इट इज नॉट इम्पॉसिबल. अगर इम्पॉसिबल होता तो मंदक खाली होता. ओके, लास्ट क्वेश्चन.
When can we say that Chaitanya Mahaprabhu's movement is successful?
Can you speak in the mic? Yeah.
When can we say that Chaitanya Mahaprabhu's movement is successful?
We can say that now, today, because Chaitanya Mahaprabhu had predicted that the holy name will be chanted in every town and village, and now it has gone to every town and village. You can go to any corner of the world, you'll find Hare Krishna devotees. Any corner of the world. Any corner of the world, people say Hare Krishna. ISKCON has 700 temples and thousands of devotees, millions of devotees all over the world. It is already successful, but we're not going to rest, we're not going to relax. We're going to keep endeavoring to preach more, isn't it? Till everyone has a bead bag and tilak. Maha laksh hona chahiye, har vyakti ke paas bead bag ho, aur tilak ho. Okay? Ye nahi ki hum soche, haan, 700 kendra khul gaye, abhi hum retire ho jayenge. Okay? Any more questions? Yes. Yes, how to give a false ego, how to give a false pride? By developing knowledge, by cultivation of spiritual knowledge, by chanting our narounds attentively, by studying the books, we realize ego, false ego, pride, these are enemies, not virtues. Bhagwan jyada prasanna hote hain jab wo dekhte hain aap vinamra bhav ke ho, humble ho. Bhagwan dukhi hote hain jab dekhte hain oh itna ahankar hai is vyakti mein. Bhagwan ko khush karna hai to sabke das bano. Adhyatmik jeevan mein we are servants of the servant of the servant of the servant. सबके दास, दासों के दास, दासों के मालिक नहीं, दास. बौद्धिक जीवन में हम हुक्म चलाना चाहते हैं, हमारा हुक्म चलेगा यार. आध्यात्मिक जीवन में हमारा सिद्धांत है, हम सब भक्तों के दास, केवल गुरु के दास नहीं, सब भक्तों के दास. और सबके दास बनोगे तो फिर गुरु प्रसन्न होंगे. अगर आप कहो हम केवल गुरु के दास हैं और किसके नहीं, काम नहीं चलेगा. सब भक्तों के दास बनो, सब भक्तों के प्रति सेवा भाव रखो. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा.